और सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरी शास्त्र खट तिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधरो सोने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, चल रही गुरमत विचार नू मैं आरंभ करा। प्रथम सनेमर फतेह कबूल कर लेनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी रहे है मनुख कुछ परिवारक जीवन, जी रहे है कुछ राजनैतिक जीवन, भावे किसी भी राजनीति सीमित आती है, परिवार तक आती है, किसी की राजनीति अपनी बिरादरी तक आती है, कौम तक आती है, किसी की राजनीति सारे मुल्क दे चाहती है। इसी तरीके नाल मनुख का कुछ समाजिक जीवन है, कुछ धार्मिक जीवन है, पर चूंकि मूल धर्म है और धर्म अत्यंत बारीक विषय, दुनिया दे जितने प्रकार का ज्ञान है, भारत के विद्वाना ने मनिया 64 तरह का ज्ञान है, 64 तरह की विद्या है। इन्हां दे चों सब तो बारीक ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और ज्ञान ही प्राप्ति का मुख साधन है। ज्ञान ही नहीं तो ध्यान का जुड़ना जिथे भी होगा गलत है। तो गलत जगह से जुड़िया होया ध्यान जीवन को गलत कर देता है, जिंदगी सारी भ्रष्ट कर देता है। प्रथम ज्ञान, फिर जिसका ज्ञान उस विच ध्यान। इतनी गलती स्पष्ट है कि मनुख उही कुछ हो जाता है जिस दे च उसका बहुता ध्यान होवे, उसे दा ही रूप हो जाता है, उसे च लीन हो जाता है। पर मैं अर्ज़ करा ध्यान भी उसे च ही मनुख दा जाता है जिस बारे वो मन लैंदा है कि इसकी मैनू समझ है, इसका मैनू ज्ञान है, इसका मैनू पता है। ये मेरे बच्चे ने ध्यान जा रहे हैं, ये पत्नी है, ये पति है, उस विच ध्यान जा रहा है। ज्ञान पहले ध्यान बाद दे, ये थोड़ी कि ध्यान पहले ते बाद ही समझ आवे मेरे बच्चे ने ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है। ज्ञान पहले ये मेरा पिता है, ये मेरी मां है। ध्यान दे चो बाद दे चाहुंदे ने, याद दे चो बाद दे चाहुंदे ने, चिंतन दा हिस्सा वो बाद दे च बनदे ने। गुरबाणी भी ऐसा कहंदी है, ज्ञान पहले ध्यान बाद दे च। ज्ञान ते ध्यान यही दो धारावां ने जिन्हां दे संगम तो अगर ज्ञान सही है और उस विच ध्यान है तो मनुख का जीवन शुद्ध रूप दे धार्मिक हो जाता है, प्रभु उसकी जिंदगी प्रगट हो जाता है। पर जैसे दास अर्ज कर रहे हैं, शरीरक बचपना आता है, शरीर की जवानी आती है, शरीर की बुजुर्गी बुढ़ेपा आता है। राजनीति की भी बुजुर्गी आती है, युवकपना आउंदा है, बचपना आउंदा है, धर्म का भी बचपना आउंदा है। और खास करके मासूम बच्चा जो अजे नवाई जन्मे मासूम इति बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल अचेत है, जन्म हो गया पर है अचेत, तो कोई भी उसनु गोद दे चुक लेंदा है, कोई भी उसनु खिडान लग पैंदा है, कोई भी उस देते अपना दावा कर सकता है। इस तरह धर्म दा बचपना थोड़ी जिया किसी दे अंदर प्यास जागी है, धर्म दे प्यास जागी है, लेकिन पता नहीं है धर्म की है। जैसे बच्चे दे अंदर भुख ते पैदा हुई है, नवे जन्मे बच्चे दे अंदर भुख दी पूर्ति किवें होवेगी ते कौन करेगा, कुछ भी नहीं पता। भुख उसनु रिजक तलाश करन ते मजबूर ते कर दी है, पर उसकी भुख पूर्ति कर दी है मां। सहजे सहजे उसनु बाद विच पता चलता है भुख है तो फिर भोजन है, और भोजन की खुद तलाश करता है, भोजन की खुद मंग करता है, भोजन की अपने ढंग नाल चाहत करता है। क्योंकि हुण जिथे इसनु भुख समझ दे चांदी है, भुख का पता चलता है, इनू भोजन का भी ज्ञान है, इसनु भोजन का भी पता है। पर धार्मिक तौर पर जन्म तो हो गया पर है अचेत, प्यास ते है पानी का कुछ भी पता नहीं। एक मासूम बच्चे नु कुछ नहीं पता, पर प्यास ते लगती है, प्यास ते उसनु तंग करती है। एक नवे जन्मे बच्चे नु भोजन का कुछ भी नहीं पता, खुराक का कुछ भी नहीं पता, पर भुख ते उसनु भी जो है संताप ग्रस्त कर दी है, भुख करके ते वो भी रोन लग पैंदा। लेकिन ये भुख किवें मिटेगी कुछ भी नहीं पता। थोड़ी बहुत भी जिन्हों के अंदर धर्म की प्यास पैदा हो जाती है, नवा नवा जन्म होया बचपन है, इस जिंदगी विच खतरा बड़ा है। जिवें बच्चे नू कोई भी गोद विच ले सकता है, तो धार्मिक दुनिया विच मनुख की इस मासूमियत इस अज्ञानता तो लोकी लाभ उठाते हैं। भुख ते है पर भोजन का इसनों कुछ भी नहीं पता, प्यास ते है पर किवें बुझेगी इसनों कुछ भी नहीं पता। इत्थों फिर डिंबी गुरु नकली मां बाप आ जाते हैं। डिंबी गुरु उन्होंने कहा जाएगा जो परमात्मा की तरफों अवतार नहीं साजे गए, जो जगत की पुकार नू सुन के वापस नहीं आए, बल्कि मां बाप बनन दा शौक, गुरु बनन दा शौक चाह, और इस दे च राजनैतिक ते आर्थिक लाभ, ये अपने उत्ते गुरु की मोहर ला लैंदे ने। इस तरह के बच्चों नू अपनी गोद च लै लैंदे ने। इत्थों ही राधा स्वामियां दीआं डारां चल पैंदीआं निरंकारियां दीआं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज देवकत बाई गदियां ला के बैठ गए, गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय बाबा प्रीति चंद जी गद्दी ला के बैठ गए। आम जगत नूं पता नहीं तो पखंड चलता है, और बड़े वड्डे पद्धर ते चलता है। नानक कूड़ रहा भरपूर, खोटे सिक्के भी बाजार दे चलते हैं। आम जगत दे बाजार दे जिथे धन का सिक्का चलता है, कहते हैं सारी दुनिया च नकली नोट भी चलते, सिक्के चलते। तो जे नकली सिक्के चल सकते हैं, नकली नोट चल सकते हैं, नकली गुरु क्यों नहीं चल सकते? चलते चलते ने, बड़े व्यापक चलते। हर मनुख नूं करंसी नोट की भी समझ नहीं आती, ये भी मैं अर्ज कर दें। तो सारी दुनिया चलते ने, नकली करंसी चल सकती है जिस दे ते संसार दा नफा नुकसान ते मनुख दी लोड़ां दी पूर्ति खड़ी है शरीरक। धन दे नकली नोट चल सकदे ने, नकली सिक्के चल सकदे ने, नकली गुरु क्यों नहीं चल सकदे? बथेरियां नूं नकली नोट की भी पहचान नहीं, बोतियां नू नकली गुरु की भी पहचान नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया, नहीं पहचान, नहीं समझ। हो सकता है करंसी के तल ते, करंसी नोटां के तल ते मनुख इतना अचेत ना होवे, इतना मूड ना होवे, पर नकली गुरुआं दी थां ते बड़ा मूड साबित हो रहा है। बहुत मूड, बड़ा अचेत, कुछ भी पता नहीं, और दावा भी बड़ा। जब कोई जानकार कह देवे ये नोट नकली है तो भरोसा भी नहीं करता। तू वो होंदा जिहदे कोल रब्बी कलाम आउंदी है, परमात्मा तो लैके आंदा, परमात्मा दे बोल जिसकी पकड़ दे चा जांदे ने, और फिर उसका यह कहना आता है बोल मेरे नहीं ने, परमात्मा दे। आप दी ग्यातली वर्ष करा, मोहम्मद साहब लिख भी नहीं सकते सन, पढ़ भी नहीं सकते सन। वक्त का इतना वड्डा अरब देशां च पैदा एक अवतारी पुरुष लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन खुदा का जो कलाम है उसकी पकड़ दे चाह गया, मन इतना एकाग्र हो गया, परमात्मा ने उसनों चुन लिया। घर विच ये अलहाम, ये कलाम जबान चो निकलिया तो आपकी पत्नी हजरत खदीजा वो कहती है ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, ये जो तुसी बोल रहे हो इस तरह मैं कभी पहले नहीं सुनिया, ये जो बोल मेरे मन को प्रभावित बड़ा कर दें, ये जो बोल ने ये थोड़े नहीं ने। तो मोहम्मद साहब ने साफ किया, पहले मोहम्मद चुप कर गया, हूँ खुदा ही बोलता है। माड़ा मोटा जो मैं अज तक बोल रहा सी हूँ मैं बोल गया, हूँ खुदा ही बोलता है, मैं नहीं बोलता। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हों आपको बोल ना जानता मैं बोलना ही नहीं जानता, गल खत्म हो गई, मेरा बोलना ही बंद हो गया, मैं नहीं बोलना जानता। तो फिर तुसी इतना पे बोल दे, सिद्धां दे सामने पे बोल दे, हरिद्वार दे पांदियां दे सामने पे बोल दे, बनारस दे बड़े बड़े खट शास्त्रियां दे सामने पे बोल दे, मक्के दे हाजियां दे सामने पे बोल दे, बड़े बड़े शहनशाह आलम हुक्मराना दे सामने पे बोल दे, की बोलना है। तो आप कहने लगे जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करें ज्ञान वे लाल, हो कहा सब हुक्म आओ जे इत हुक्म उसता, ओ दे बोल मैं बोल रहे मेरे नहीं रहे। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दसम ग्रंथ च बड़ी निर्माणता की छाप देंदे ने, अकाल पुरख बाच अस कीट प्रत, मैं कीट दे प्रति, मैं कीड़े दे प्रति अकाल पुरख दे बचन, जगत सुन लो, जो ने जो प्रभ मो सो कहा सो कहो जग माह, जो कुछ प्रभु ने आख्या कह रहे मेरे अपने बोलने, मैं नहीं कह रहे। पर मैर्ज करा जिमें असली नोट ते नकली नोट, असली करंसी ते नकली करंसी दी हर बंदे नू समझ नहीं आती कि जे करंसी की दुनिया धोखा खा सकता है, धर्म दे गुरुआं की दुनिया च भी धोखा खा सकता है। इस वास्ते हर पांच दस साल तो बाद, बीस साल तो बाद कोई ना कोई दावा कर बैठता मैं अवतार हाँ, मैं गुरु हाँ। शायद आपनों पता होवे दास जद कोई 27-28 जून नू मैं निकलिया इंडिया तो, अक्सर गर्मियां दे 3 महीने में बाहर आना होना, उदो इंडिया च एक रोला पिया सी, एक बंदा गुरु बन के आनंदपुर साहब चला गया, नाल 2-3 हजार चेले चांटिया नू, मैं गुरु गोबिंद सिंह तख्त मेरा, ये हुण दी गल शायद थोड़े पढ़न दे चाहिए। मैं गुरु गोविंद सिंह। दावा करने वाला भी कम से कम 80 साल का नेड़े तेड़े ही सी, बहुत बिरद सी। पालकी च उसनों बिठाया होया, चार बंदिया ने पालकी चुकी हुई, कम से कम 2000 मूर्खां दा टोला इकट्ठा किया होया, विच कुछ राजनीतिक भी जरूर आउणगे, क्योंकि बहुत सारे गुरुआं नूं संतां नूं जन्म देंदे ने राजनीतिक। ते वी मैं अर्ज करदा, मैं गुरु गोबिंद सिंह, तख्त मेरा खाली करो, मैं बैठांगा। उत्थों दे निहंग सिंह सेवादार अगे आ गए, छित्र शायद बहुत पै जाने सन, शायद लाश ही वापस आंदी, पर पुलिस की मदाखलत बिच बचाव हो गया। और मुखी मुखी जो बना के लिया रहे सन गुरु, वो पकड़े, उन्होंने केस चल रहे, चार्ज किए गए। कुछ अरसा पहले एक ने विष्णु होण दा, मैं विष्णु भगवान दिल्ली विच दावा कीता सी, मैं राम हाँ, इस तरह बरगढ़ एक छोटा जिहा कस्बा है उड़ीसा का, उत्थे किसी ने दावा किया, दावे होंदे रहिंदे। मैं तो सुन के हैरान होया, इस तरह के दावे अमेरिका जैसे देश देश भी होंदे रहिंदे, जो कहिंदे ने बड़ी सियाणी कौम है, खाक सियाणी है, धर्म के मामले कख नहीं जानती, ये कौम कुछ भी नहीं जानती। धर्म की मूर्खता जो भारत विच है, उस तो हजारा गुणा ज्यादा इधर है। थोड़ी बहुत जो करंसी की पहचान रख रहे हैं, तो कह देंगे ने नकली नोट ने, वो भारत देश से नहीं चलते, अमेरिका चल जाते, मैं देखिया कनेडा चल जाते, इंग्लैंड दे चल जाते। जिन्ना गुरुआ की छाप धाक उत्थे नहीं बैठती, इत्थे बैठ जाती है, क्योंकि मैं कई का उत्थे नाम भी नहीं सुने, लेकिन इत्थे छाप बैठ जाती। तो उस तो मैं अंदाजा लाना, माड़ी मोटी नोटों की पहचान भारतीयों आ गई है, अजे ना बाहर के लोगों नहीं आई। हो सकता है होर कुछ बहुत कुछ जानते अवन धर्म के बारे नावाकफियत, मासूम बच्चा है, कोई भी गोद दे चुक 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 सकता है। धार्मिक जिंदगी है, धर्म की तलाश है, प्यास है, पर है बच्चा, इनू तो कोई गोद दे चले सकता है, कोई पखंडी चुक सकता है, कोई पखंडी लेके जा सकता है। धर्म दे इस बचपने तो बस इतना खतरा जरूर है, इन कोई भी गोद च ले सकता है, सिर्फ गोद च ही नहीं ले सकता, कोई दावा ही कर सकता है मेरा अपना बच्चा है, ले जा सकता है। ते भी मैं अर्ज करा, दुनिया च इस तरह के भी झमेले आते, इस तरह के भी पखंड आते हैं, दुनिया भर के हस्पतालों में इस तरह का सिलसिला होया है, बच्चा किसी का सी लै कोई गए, दावा किसी ने ठोक दिता मेरा, कारण बच्चा है, वह बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, कौन है मेरी मां, कुछ पता नहीं, कौन है मेरा प्यो, तो उस देते ते कोई भी दावा ठोक सकता है, पता तो कुछ भी नहीं, की है परमात्मा, किसने कहते हैं गुरु, तो कोई भी दावा कर सकता है, मैं हाँ गुरु तेरा, मैं हाँ रब्बा तेरा, ये दावा कोई भी कर सकता है। और इस दावे की लपेट दे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जो धार्मिक तल के बच्चे ने, इतनी मैं अर्ज करा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। ए प्रभु, जन्म ते हो गए, तेरी प्यास ते पैदा हो गई है, तेरी तड़प ते पैदा हो गई है, तेरी भुख ते पैदा हो गई है। भुख किवें मिटेगी, भोजन का कुछ नहीं पता, प्यास किवें मिटेगी, पानी का कुछ भी नहीं पता। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, नवे जन्मे बच्चे नूं भी प्यास लगती है, पर मिटेगी किस तरह, बुझेगी किस तरह, कुछ भी नहीं पता। भुख उन्हों भी लगती है, पर भुख मेरी मिटेगी किस तरह, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ रोना ही जानता है, मंगना भी नहीं जानता, उन्हों हो की रहा है यह भी नहीं कुछ कह सकता। धार्मिक तौर पर जो बच्चा है, नवा नवा धार्मिक बंदा है, या चलो बहुत दिनों का भी आ रहा हो, पर सूझ समझ कुछ ना हो बचपना हो तो कोई भी बरगला सकता है। राजनीतिक दुनिया दे जितना झूठ चलता है उस तो भी दुगुना झूठ चलता है धर्म की दुनिया। इत्थे ही आके डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह दिता सी इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि शाही एक अयारी है फकीरी भी मकारी है। इकबाल कहिंदा मेरे जैसा सादा दिल बंदा मासूम बंदा केड़े पासे जावे। राजनैतिकां कोल जाने उन्हां दी सारी राजनीति झूठ ते खड़ी है मकारी ते खड़ी है हंकार ते खड़ी है। पर जे फकीरां कोल जांदे आ ते उन्हां दी फकीरी भी अयारी ते खड़ी है मकारी ते खड़ी है धोखे ते खड़ी है तो मैं किथे जावां। पर इकबाल जैसा बंदा सियाणा है सूझवान है उन्हों समझ आ गई है। आम बंदियां नूं राजनीतिक दी कोई समझ नहीं। बड़े बड़े जालम राजनीतिक भी बंदियां नूं ठग लैंदे ने पर दुनिया उन्हां दे पिछे जिंदाबाद करी जांदी है। मैं देखे जिंदाबाद भी करी जांदे ने ते ठगाए भी गए ने इतने मूर्ख दुनिया। ते जिन्हां नूं राजनीतिक लोग ठग लैंदे ने उन्हां नूं धार्मिक नहीं ठग सकदे। जो राजनीतिक ठगी दी लपेट दे चास आ जांदे ने क्या उन्हां नूं धर्म धार्मिक तौर ते जिहड़े ठग ने उह नहीं ठग सकदे। जो इतनी भी सूझ समझ नहीं रखदे कि राजनीति निरी झूठ ते खड़ी है निरी हंकार ते खड़ी है। इस वास्ते असीं इक दोहरा रोज पढ़ते हाँ राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। राज सता खालिस पवित्र बंदे कोल होवे ते पवित्र किसनों मनोगे खालसा किसनों मनोगे। गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखते हैं पर मेरा इस वक्त एक प्रकरण नहीं है। परयो काल सवे जब ऊपर माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत जय जाने। प्रेमा भक्ति नाल जिसका हिरदा भर गया खालसा कलगी दरवी यही कहने लगे पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोड़ मड़ी मठ भूल नवा। पूरन प्रेम खालसा कौन है पूरन प्रेम नाल जो भर गया। पूरन प्रेम तो मुराद सारिया नाल प्रेम। हुण जिस नाल प्रेम हो उसनों ठगना बड़ा औखा है जिस नाल प्रेम है उसनों धोखा देना बड़ा औखा है जिस नाल प्रेम है उसनों मारना बड़ा औखा है जिस नाल प्रेम है उसनों दुखी करना बड़ा औखा है। उस तो ते मनुख सदके होण नूं जी करदा है कुरबान होण नूं जी करदा है जिस नाल प्रेम है। पर जिस नाल प्रेम नहीं है कुछ भी नहीं है उस कोल ते फिर खोण नूं जी करदा है खो लई है इसदे कोल। इहदा सुख चैन खो लई है इहदा साजो समान खो लई है मौका लग जाए दी जिंद जान खो लई है खोण नूं जी करदा है देन नो जी करदा है बशरते पूरन प्रेम होवे या उस नाल प्रेम होवे। चलो कल्ले नाल प्रेम होवे देन नो जी करदा है इनू सुख दे रही है इनू आराम दे रही है लोड़ पै जे इस नूं अपनी जिंद जान दे रही है देन नो भी जी करदा है। इस वास्ते प्रेम तो बिना कोई ऐसा दैवी गुण नहीं जो हिरदे नूं शुद्ध कर सके। ये भी महर्ष करते हैं यही एक गुण है जो हिरदे नूं शुद्ध करते हैं। पूरन प्रेम नाल भरिया होया मनुख किसी को धोखा खा सकता है जान बुझ के। चलो धोखा दे रहा है जिमें कई दफा एक मासूम बच्चा प्यो नो कह देंदा मैं तेरे नाल कुश्ती करनी और तीन चार साल का बच्चा आखे प्यो नो ते वो भी देखे और चलो बच्चे का दिल रखने वास्ते कर लेने कुश्ती प्यो अपने आप गिर जाता है बच्चा खुश हो जाता है प्यो की छाती से बैठ के कहता लै मैं टा दिता है ते प्यो भी इस खुश है बच्चे की जित प्यो भी खुश ममता का मारे है। प्यो प्यो नहीं होगा उदो जब बच्चे ढा दे तो वो छाती से बैठ जाए ये प्यो नहीं होगा ये पिता नहीं होगा प्यो की ममता कोई नहीं तू जित जा अब डह जाता है बैठ गया बच्चा छाती दे, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर प्यो भी खुश हो रहे हैं। वो प्यो ते लाड लड़ा रहे हैं, वो ममता दा मारे हो या प्यार कर रहे हैं। कई दफा पूर्ण प्रेम नाल भरिया होया मनुख जान बुझ के ठगा जांदा। चलो एन जी सही, लेकिन भूल के भी किसी नूं ठगेगा नहीं, ये भी मैं अर्ज कर रहा। पर प्रेम तो खाली मनुख सिवाय धोखाधड़ी तो और कुछ भी नहीं करेगा। तो इकबाल जैसे बंदे नूं कहना पिया, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे के दर जाए, मेरे जैसा एक सादा बंदा। इकबाल कहिंदा किहड़े पासे जावे, जिस दे अंदर रब्बी तड़प पैदा होई है, सच दी तड़प पैदा हुई है, पर जो धर्म दी भी समझ रखता है, राजनीति दी भी समझ रखता है, मेरे जैसा बंदा इकबाल इंज कहिंदा है, मैं जानदा राजनीति की है, मैनू पता है धर्म की है, पर धर्म वंडन का जो दावा कर रहे हैं, राजनीतिक सुधार का जो दावा कर रहे हैं, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि शाही एक अयारी है, फकीरी भी मकारी है। तो मुख्तसर में अर्ज करा लमकावा ना, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु जन्म ते हो गए। इस तरह के महापुरुष जब मनुख का धार्मिक बचपना बयान करन, तो फिर वो अपने आप नूं अगे कर देंदे। भुज बल बेर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। हे प्रभु जन्म ते हो गया और चलना भी आ गया, पर मैं उस बच्चे की तरह चल रहा जिसने चलना अज सीखा। जिसने अज सीखा किन्नी क वाट तय करेगा, किन्ना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा। गरत परत गह लेहो अंगुरिया, हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, मेरी बांह पकड़, मैं लंबा नहीं चल सकता। मासूम बच्चा चल रहा है, गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, पर जिस दिन कदम पुटदा है, एक दो मां खुश हो जा रही है, चलना आ गया, पिता प्रसन्न हो जाता है। भारत विच कई कौमां उस दिन धार्मिक मंदिर विच बच्चे नूं लै जांदियां, प्रसाद वंडदे ने, खुशी मनांदे ने, साडे बच्चे ने पैर पुटना शुरू कर दिता, चलना शुरू किया। कुछ कौमां विच मैं इधर गुजरात विच देखिया, बच्चा जे पहला बोल बोलना शुरू कर दे, चलो मां ही आखना शुरू कर दे, कुछ होर मंदिर विच लै जांदे ने और अपने ढंग नाल पूजन कर देने, बच्चे ने बोलना सीख लिया, बच्चे की जबान चो बोल निकले, खुशियां मनाते हैं, प्रसाद वंडते हैं। कई संपन्न घराने अपनी बिरादरी नूं इकट्ठा कर देने, खान पान कराते हैं, बच्चे ने बोलना सीख लिया, इहदे मूहों शब्द निकले ने, बच्चे ने चलना सीख लिया, भावें दो कदम ही चले है, खुश हो गई है मां, खुश हो गया सारा परिवार। साहब कहते ने मैं चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज ही चलना सीखे। और मैं फिर अर्ज करा, चार पांच साल का बच्चा हो जाए तो एक कदम भी ना पुटे, एक कदम, तो फिर मां बाप नूं चिंता हो जाती है, डॉक्टर को ले जाने की गल है। हो गया चार पांच साल का, जबान चो एक बोल भी नहीं बोलता, तो चिंता हो जाती है। हो गया चार पांच साल का, ना मां नूं समझदा ना प्यो नूं समझदा, इहदी अखां ही हर वक्त पौंदियां रहिंदियां, तो मां नूं भी चिंता हो जाती है, प्यो नूं पता नहीं इसका दिमाग विकसित होया कि नहीं, इहदी ते अखां ही फिरियां रहिंदियां। इह ते इंज लगता है जिवें बौद्धक तल तो तले चिंता जो है जाग पैंदी है। पांच छे साल तो कोई गुरुद्वारे आ रहा होवे ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਪਿਓ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ ਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੋੜੇਗਾ, ਯਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਸਮਝ ਜੋ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾ ਨਾ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਵੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਤ ਮਾਤ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਾਤ ਮਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਤਨੇ ਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ, ਸੋ ਧਾਮ ਧਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਉਸਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਜੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਟਕੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜੋ ਜਪ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਮ ਹੈ। ਓਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਮ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਓਮ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨੰਤ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 52 ਅਖਰੀ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲਿਖੇ ਅਰ ਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਅਨਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਫਾਤੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖੱਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡੋਰ ਸੀ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸ਼ੌਕ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਖੱਲੁਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, संत मेरी होंद नहीं है, माता पिता के ना रखे है। सस्से अखर तो महाराज का अखर जो आया सस्से अखर तो ना रख देता, संत मेरी कोई अवस्था नहीं है। क्यों कई भुलेखे नाल संत मसकीन सिंह भी कहन लग पैंदे ने भई संत इन्हां दी अवस्था होगी तो मसकीन सिंह नाम होगा। इस करके मैं कहना भरम भुलेखा दूर कर रही, कई मुआलता भी पै गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना, सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो यो चरो। हे अकाल पुरख मैं मन करके तेरा सिख हाँ और मैनू लालच है तेरे गीत गाण का। मन करके तेरा सिख और जे हे परमात्मा मैं तेरा सिख हाँ तो आपे ही तो मेरा गुरु हो गया। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। गुरु नानक भी यही कहने अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु में लिया सोई जी। वो जो पार ब्रह्म है वो जो व्यापक सदा है मेरा गुरु है। कंधार दा सूफी संत वली कंधारी नहीं। कंधार एक बहुत वड्डा शहर है, उत्थे बहुत वड्डी दरगाह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज महीने तो भी ज्यादा इस फकीर दे कोल रहे ने। जद भी सतगुरु अगे ईरान जाण दी तैयारी करन फकीर नहीं जाण देंदा सी, पैरी पै जांदा सी, महाराज रुको रुको। यही एक फकीर है जिसने गुरु नानक नूं एक महीने रोकी रखे कंधार दे विच। वरना एक एक दिन बाबे दा बड़ा कीमती, अगे जाना अगे जाना, पर पैरी पै जांदा सी। महाराज थोड़ी होंद नाल कोई चैन मिलता है, सुकून मिलता है। थोड़े कोल बैठ के अल्लाह चेते आंदा है, खुदा चेते आंदा है। सांझ बड़ी गूढ़ी जुड़ गई, महान हो गई। कंधार दे इतिहासक स्थान ने बाबा श्री चंद दे गुरु नानक देव जी दे दास दर्शन करके आया। काबुल दे इतिहासक स्थान है साहेब गुरु नानक देव जी का। गजनी दे इतिहासक स्थान है भाई नंद लाल का। काबुल दे खास महले महला शौराह भाई गुरदास जी का इतिहासक स्थान है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिथे गुरुआ के बहुत सारे इतिहासक स्थान है। और काबुल की सिखी अज भी इंज समझ लो महान सिखी। थोनू 4 बजे अमृत वेले गुरुद्वारे परे मिलने 7 बजे समाप्ति हो जाती है। जिन्हों कहते हैं अमृत वेला उत्थे देखने को मिलता है। और हर घर दे चो 3 बजे वाहिगुरु मंत्र की आवाज आनी शुरू हो जाती। किसी भी गली चो लंघ के देखना घर का कोई ना कोई मैंबर ते जप कर रहा है। और 4 बजे गुरुद्वारे भर जाने, 7 बजे समाप्ति, 8 बजे सारे बिजनेसमैन ने दुकानदार ने अपने काम करते चले जाते। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इस सूफी संत गुरु नानक देव जी महाराज नाल जब गूढ़ी सांझ जुड़ गई ते वचन करदा हाथ जोड़ के रहनुमाए तो की ते जन्म साखी च लिखा है। जन्म साखी दे बोल मैं थोड़े सामने रखते रहनुमाए तो की थोड़ा रहबर कौन है, थोड़ा गुरु कौन है। इतना ज्ञान इतनी सूझ इतनी समझ और थोड़े को इतना आनंद इतना चानना रहनो माए तो की कौन है थोड़ा रह पर गुरु कौन है। और 2 शब्दों च इसने पूछे रहनो माए तो की इतने छोटे 2 लफ्जा सतगुरु जवाब देने खुदाए मन मेरा खुदाई मेरा रह पर है और कोई रह पर नहीं, मेरा खुदाई मेरा गुरु है। खुदा दे बोल पकड़ दे चाह गए, खुदा की आवाज मैनु खुदा तक ले गई है। तेरा सदड़ा सुनीजे भाई जे को बह अला है। यकीन जानो इस तरह के बोल जो परमात्मा तो आए ने किधरे गाए जा रहे हैं सच्ची ते सुची आत्मा नु बड़े प्रेरते हैं खिंचते हैं। तेरी आवाज तेरी गल तो परमात्मा की आवाज की सीध ते ही असी परमात्मा तक जा सकते हैं। तो तखल्लुस गुणात्मक नाम, जैसे मुगल शहनशाह अपना तखल्लुस रखते सन जलालुद्दीन हुमायूं दा लड़का तख्त ते बैठा ते अपना तखल्लुस रखदा है अकबर। अकबर दा मतलब है सब तो वड्डा। अकबर दा लड़का शाहजादा सलीम जिहदी मां सी जोधां बाई वाली है जयपुर दी बहन राजा मान सिंह, उसकी बहन जोधां बाई अकबर दी बेगम, इसकी कुख तो सलीम का जन्म होया। ये बाद विच बनिया जहांगीर। जब तख्त पर बैठा इसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर, सारा जहान मेरी मुठ्ठी। अकबर का मतलब सब तो मैं वड्डा, जिवें कहिंदे ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। तो जलालुद्दीन ने अपना तखल्लुस रख लिया अकबर, मैं सब तो वड्डा। गल मुकी, खत्म। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुरम वक्त पाके सिंघासन पर बैठा, उसने अपना तहल्लुस रखिया शाहे जहां, शाहजहां सिर्फ हिंदुस्तान का शहनशाह नहीं, सारी दुनिया का बादशाह शाहे जहां। शाहजहां का लड़का मयुनदीन जिस दिन सिंघासन पर बैठता है वो अपना तहल्लुस रखता है औरंगजेब। औरंग कहते हैं तखत नो, जेब कहते हैं शिंगार नो, औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा। ये तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे की बाणी दे राही उन्हों लिखिया। ये जो तू तखल्लुस रखिया गलत लिखिया। मां बाप ने तेरा नाम गलत चुनिया मयुनदीन। दीन धर्म दी मूर्ति, धर्म मूर्ति साढ़े हिंदू वीरां विच बहुत सारे दे नाम आते हैं, धर्म मूर्ति, त्रिमूर्ति, धर्म मूर्ति। इसे तरह मयुन दीन, दीन दी मूर्ति, धर्म दी मूर्ति। ये तो चलो शाहजहां ने ना रखे, प्यो ने ना रखे, मौलविया ने ना रखे, पर मयुन दीन ने अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। तखल्लुस की चोण अक्सर दार्शनिक, चिंतक, कवि, लेखक या ये बादशाह लोग खुद कर लेंगे, उन्हें खुद की थी। औरंगजेब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं जफरनामे दे रहे, न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरेब। ये जो तू तखल्लुस रखे बिल्कुल गलत रखे। तखल्लुस का मतलब है कुछ खासियत है तो उसके मुताबिक उसने नाम रख रखे। इनू गुणात्मक नाम भी कहते हैं, इसनों तखल्लुस भी कहते हैं। तू तखत की शोभा नहीं है औरंगजेब, जेब शिंगार, औरंग तखत, तखत का शिंगार, तखत की शोभा। साहब कहने तू तखत की शोभा नहीं, तेरे जैसा बंदा जब तखत पर बैठता है तखत बदनाम हो जाता है, तखत भ्रष्ट हो जाता है, तखत मैला हो जाता है, राजनीति जो है बदनाम हो जाती है। तू कोई औरंगजेब नहीं। तखल्लुस परमात्मा दे रखे ने अवतारी पुरशा ने, यह भी मैं अर्ज कर दू। वो जो इलाही शक्ति सी व्यापक मोहम्मद साहब तो उसको कहते ना खुदा, पर तखल्लुस उसको देते ने अल्लाह, ये भी मैं अर्ज कर दिया। वो जो कथने अनाद से ओंकार ओम, पर उपनिषदां दे ऋषि उसनु तखल्लुस देंदे ने राम राम। गोरख उसनु तखल्लुस देंदा है, भावें गोरख भी ओंकार बनता है, पर तखल्लुस ओ भी देंदा है निरंजन निरंजन, अंजन तो रहत, माया तो रहत, कालक तो रहत। वो जो ओंकार आद कथनी अनाद, या वो जो एक ओंकार है ही ओंकार, जो एक है ओंकार है, उसकी आवाज ओंकार है, वो आप ओंकार है। ओंकार आद में जाना लिखे और मेटे ताए नवाना, कबीर भी ऐसा कहते रहे। और उस ओंकार वाले जो तखल्लुस धन गुरु नानक देव जी की आत्मा तो निकलिया वाहे गुरु वाहे गुरु, आश्चर्य है। तो सारा अंधेरा दूर कर देना है और नूर ही नूर कर देना है, चानना ही चानना कर देना है। चौथी दे विद्वान जो भेदभाव तो रहे तो के जब तब करके उच्चे उठे ने, उन्होंने मैनू कहा अज दे युग का महामंत्र है वाहे गुरु वाहे गुरु। एक तो नाभी ते चोट छेती कर दे और अंदर दी सुती हुई कला छेती जगांदा है, ये खुद मनते। कुछ जैनिया ने मने है, सनातनिया ने मने इसनू तस्लीम किया। कहते निराली खोज है गुरु नानक की, ये महान खोज है, ये बड़ा कीमती तखलुस है। उस ओहंकार नू बड़ा कीमती तखलुस दिता गया है और बड़ी गहरी पकड़ है धन गुरु नानक देव जी महाराज की। तो सारे ही नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, पर गुरु नानक दी सूझ बूझ के मुताबिक जो जपना चाहेगा वाहे गुरु एकदम दे पूरे हो जाते हैं और यही आवाज उत्थे तक पहुंचाती है। तो मैं अर्ज करा पांच सात साल दस साल तो कोई आ रहा है ते अमृत वेले नहीं जा जपदा पिया वाहे गुरु एक दफा तो सतगुरु नूं भी चिंता हो जाएगी इन हो की गया। चार साल का बच्चा हो गया मां मां नहीं करता, दस साल हो गए ने सत्संग करदे आ वाहेगुरु नहीं करता, तो एक दफा तो वाहेगुरु नूं भी ख्याल आवेगा। मां भी चाहती है बच्चा करे मां मां, उहदा हिरदा ठर जांदा है उहदे मुंहों मां निकलदा, सीने नाल ला लैंदा परमात्मा। जब मनुख की जबान चो निकलता है गहराई चो वाहे गुरु आखद ही रस बन जाता है, आखद ही आनंद बन जाता है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लियो अंगूरिया चलदा ते गिरदा चलदा ते गिरदा। चलना की है श्रद्धा, गिरना की है शक। बस मनुख के अंदर श्रद्धा भी पैदा होती है, शक भी पैदा होता है। श्रद्धा पैदा हो गई गुरुद्वारे आ गया, शक पैदा हो गई हर गल नहीं मननी। श्रद्धा पैदा हो गई गुरु की गल भी सुननी है, शक भी पैदा हो गया नहीं उठना अमृत वेले नहीं जपना। श्रद्धा शक श्रद्धा शक। श्रद्धा पैदा हुई आके धर्म उसारी मंदिरों लई दान किया, शक पैदा होया बेईमानी की। श्रद्धा पैदा हुई सत्संग दे चाण बैठा है, शक पैदा होया कुसंगत च बैठा है। श्रद्धा पैदा हुई अमृत छकण की प्यास पैदा हुई, शक पैदा होया बोतल शराब की खोल के बैठा है। श्रद्धा शक श्रद्धा शक। चलना गिरना और थोनू चलते गिरदे दिखाई देणगे। हुणे सत्संग च बैठे सन हुण कुसंगत च, हुणे जबान नाल गुरबाणी पे पढ़ते सन हुण गालां पे कढ़दे झूठ पे बोलदे, हुणे दान पे देंदे सन हुण धोखा ते बेईमानी पे करदे, हुणे ते सेवा पे करदे सन हुण कठोर वचन पे बोलदे। श्रद्धा शक चलना गिरना ते चलना गिरना जारी रहे ते कई दफा गोडे गिटे ऐसे टुटदे बंदे दा चलना ही रह जांदा। मैं ऐसे भी गिरे देखे न रह गए न चलन जोगा नहीं रहे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लियो अंगुरिया, उंगल पकड़ मेरी मैं गिरा ना क्योंकि मैनू अज ही चलना आया। सुरत चल पई है पर अज चली है, ध्यान जुड़े है पर अज जुड़े है। और जिस दिन पहला ध्यान जुड़दा है कुछ ना कुछ भुलक कुछ ना कुछ ताजगी कुछ ना कुछ नवीनता मनुख के अंदर पैदा होती है। बच्चा आप भी खुश हो जाता है जिस दिन पहला कदम पुटता है। कभी बगौर मुताला करना एक दफा सुनो एक कदम चलना आ जाए फिर रुकता नहीं, बार बार कोशिश करता है चलन की। किसी एक दिन ध्यान चल पाया इसका जुड़ गया फिर मनुख बड़ी कोशिश करता है जुड़े भाई सवेरे ते रस आया से हुण शामी भी आवे, शाम नूं ते आनंद बनया से हुण सवेरे भी बने। चल जो पिया एक कदम चले पर गिर गया। तो साहब कहते ने हे प्रभु तू मेरी बांह पकड़ मैं गिरा ना, मैं नहीं चल सकता। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੁਝ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ ਪੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਤਸੰਗੀ, ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਧਿਆਨ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਵੰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆੜਤ ਦੁਆਰ ਟੁੱਟ ਪਿੰਗੋਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ।
Wow.